أعوذ بالله من شر الشيطان الجليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اور کائنات کو پائے جانے والے اسرار کو بندہ اپنی آنکھوں
آنکھوں سے دیکھ سکے، اس کی کبریائی کا مشاہدہ کر سکے. اللہ نے اسے عقل اس لیے دی ہے، سمجھ اس لیے دی ہے تاکہ وہ معرفت پروردگار حاصل کر سکے اور کائنات کے چھپے ہوئے اسرار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، سمجھ سکے، اللہ کی قدرت کو جان سکے. نہ صرف یہ کہ وہ قدرت کو دور سے جانے گا، بلکہ جیسے جیسے وہ قدرت سے قریب ہوتا جائے گا وہ خود بھی طاقتور ہوتا چلا جائے گا. نہ یہ کہ معرفت حاصل کرے گا تو وہ معرفت سے دور رہے گا، بلکہ بامعرفت کہلائے گا. اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ عالم و معلوم الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ علم اور عالم جب ملتے ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں، علم و عالم و معلوم ایک ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں فضیلتیں چاہیے، اگر تمہیں میری پسند کا بننا ہے تو تمہیں مصطفیٰ کی پیروی کرنا ہے، تمہیں نبی کریم جیسا بننا ہے. اس لیے کہ میں نبی کو بہت چاہتا ہوں، میں نبی کو بہت پسند کرتا ہوں، نبی کی عادتیں مجھے بہت پسند ہیں، نبی کریم کا انداز مجھے بہت پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم ویسے ہی بیٹھو جیسا میرا محمد بیٹھتا ہے، تم ویسے ہی اٹھو جیسے میرا محمد اٹھتا ہے، تم ویسے ہی سونا جیسے میرا محمد سوتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے ویسے ہی ملنا جیسے میرے محمد ملتے ہیں. تمہارے اندر وہی کیفیت پیدا ہونا چاہیے، وہی ایمان پیدا ہونا چاہیے جو میرے محمد کے پاس ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کے جیسے ہو. اسی لیے تو نماز میں سورہ حمد کو واجب قرار دیا گیا اور سورہ حمد میں یہ بات رکھی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان پر ان کا راستہ دکھا کہ جس پر تو نے اپنی رحمتیں نازل کی. نہ صرف رحمتیں نازل کی بلکہ رحمت کا مجسم بنا دیا، بلکہ نعمت کا مجسم بنا دیا. ان کی پیروی، ان کا راستہ، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا قدم نازل کیا. یعنی اللہ کے مبعوث بندوں کی ہم پیروی نہ کریں، ان کے راستے پہ نہ چلیں کہ جس پر تو نے غضب نازل کیا. فرعون پر تو نے غضب نازل کیا، نمرود پر تو نے غضب نازل کیا، شداد پر تو نے غضب نازل کیا، امیر شام پر غضب نازل کیا، یزید پر غضب نازل کیا. تو ان کا پیرو ہمیں نہ بنا، ان کے نقش قدم پہ ہمیں نہ چلا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ بندے رہے ہیں جو اس کو تو پسند نہیں کرتا، یہ اکڑنے والے تھے، یہ مغرور تھے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، یہ غصے کو پینے والے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ تھے کہ جو قاذبین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ لوگ مزدار تھے. اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جائے اور دوسروں پہ رحم کر رہا ہے. اللہ رسول اکرم جیسے بندے کو پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کچرا پھینکا اس کے لیے بد دعا کر دے، اس نے جو ہے پتھر پھینکا اس کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کر دی اور اس سے انتقام لینے لگے اور اس کو گالی دینے لگے اور اس کے خلاف جو ہے اللہ نے بغاوت بلند کر دی. نہیں، نبی کریم کے جیسے ہو کہ جس طرح سے نبی نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، اس طرح اور رسول اللہ جیسے تھے ویسے انہوں نے علی کو بنایا، اور جیسے علی مرتضیٰ تھے انہوں نے چاہا کہ میرے اصحاب کو بھی میں اپنی طرح بنا لوں. تو جناب مالک اشتر کو کیسے بنایا تھا؟ جیسے علی چاہتے تھے ویسے مالک اشتر کو تیار کیا. تو مالک نے کیا کیا؟ وہی کیا جو علی کرتے تھے. ایسے ہوتے ہیں اتباع کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں پیروی کرنے والے کہ مالک اشتر کو جب کسی دکاندار نے جھڑک دیا، جانتا نہ تھا، پہچانتا نہ تھا کہ مالک کون ہے، جب جھڑک دیتا ہے وہ شخص اور ناراحت ہو جاتے ہیں، ناراضگی پیدا ہوتی होती है तो नाराजगी का इजहार नहीं करते, नाराहत होते हैं तो नाराजगी का इजहार नहीं करते, बल्कि मस्जिद की तरफ जाते हैं। वो ईश्वर जो पहचानता है वो कहता है तूने नहीं पहचाना कि ये मालिक ईश्वर है, ये अली का गुलाम खास है। ये सुनता था कि दुकानदार थरथराने लगता है, क्योंकि लोगों का मिजाज ये होता है कि ताकतवरों के आगे छुप जाते हैं, कमजोरों को दबाते हैं। ये अखलाक उनके सामने पेश करते हैं जो ताकतवर नजर आता है, तो उनके सामने बदअखलाक हो जाते हैं जो लोग कमजोर होते हैं, जो नातवान होते हैं। कि आप देखेंगे जितने बड़े बड़े पहलवान हैं ये लोग क्या है, ये पहलवान हर जगह पहलवानी नहीं दिखाते, अपने से कोई बड़ा नजर आता है तो यही पहलवान छुप जाते हैं, और जब कोई कमजोर नजर आता है तो उसे गाली भी देते हैं, मारते भी हैं, झिड़कते भी हैं। क्योंकि ये जितने पहलवान होते हैं वो हमेशा दूसरे को जलील करना जानते हैं, मारना जानते हैं, मार खाना नहीं जानते। पहलवान वो नहीं है जो मारे, पहलवान वो है जो मार खाने की सलाह देते। तो बहरहाल जब उस शख्स को ये मालूम होता है तो वो दौड़ने लगता है, वो समझता है कि कोई इंतकाम लेने की जरूरत, जबकि वो नहीं जानता बुजुर्गों की सिफत ये होती है कि वो कमजोरों और हाथ नहीं उठाते। उनकी सिफत क्या होती है, वो ताकतवरों को छुटाने की कोशिश करते हैं और कमजोरों को माफ कर देते हैं। ये मामूली आदमी, इसके कमजोर आदमी इसे माफ कर दो, ये बेचारा है इसे माफ कर दो। नहीं, अगर फिरौन हो तो खड़े हो जाते हैं, ताकत के मुकाबले में नहीं झुकते, कुव्वत के मुकाबले में नहीं झुकते। अमीरुल मोमिनीन ने क्या तरबियत दी थी, यही तरबियत दी थी एक वाली, और पहले ही दिन यही कहा था कि मैं हक को वापस दिलाऊंगा उन कलीजों का हक जो उनसे हड़प लिया गया है, उन कमजोरों का हक, उन यतीमों का हक जो सर कर लिया गया है, जो उनसे छीन लिया गया है, उनके हलक से निकालूंगा जो ताकतवरों ने निगल लिया है। ये था अमीरुल मोमिनीन का किस्सा। तो मालिक कैसे बदला दे सकते थे, वो शख्स पीछे दौड़ता है, समझता है कि मालिक पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन जब वो पीछे पीछे जाता है तो क्या देखता है कि मालिक मस्जिद में दाखिल हो गया। मस्जिद में दाखिल होने के बाद दस्त दुआ को बुलंद करके इसके हक में दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसके अखलाक को दुरुस्त कर दे, इसके किरदार को दुरुस्त कर दे, इसको अपना मुती और फरमाबरदार बना दे। जब वो सुनता है तो कदमों में गिर जाता है। कैसे थे नबी करीम, इसका अंदाजा लगाइए। ये सब ये उम्मत के जितने फजाइल हैं, ये सारी फजीलतें नबी करीम से सराजीब होती हैं। आपके वजूद की शुआएं हैं जो उम्मत के यहाँ जहां जहां पर किरदार है, किरदार मोहम्मद ही नजर आए, समझो वो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है। फरमाते हैं कि हमारे नबी ऐसे थे कि वो ऐसे बैठते थे कि जैसे गुलाम बैठा करते। नबी की बैठक गुलामों की तरह हुआ करती थी, वो शाहों की तरह नहीं बैठते थे बल्कि गुलामों की तरह बैठते थे। जब वो गुलामों के दरमियान बैठ के खाना खाते तो सामने आने वाला ये न पहचानता कि इनमें से रसूल ग्रामी सदम कौन है, बल्कि पूछता अय्युकुम मोहम्मद, तुमने मोहम्मद कौन है, तुमने मोहम्मद कौन है बताओ। नबी करीम की जिंदगी ऐसी जिंदगी थी, नबी फकीराना जिंदगी पसंद करते थे, नबी गरीबों की जिंदगी पसंद करते थे, कौम के सबसे बस्तर मखलूकात के साथ नबी करीम गरीबों के साथ बैठना पसंद करते थे। नबी करीम की रविश ऐसी थी, नबी करीम का किरदार ऐसा था, नबी शाहाना लिबास नहीं पहनते थे, गरीबों का लिबास पसंद करते थे, गरीबों की बैठक पसंद करते थे, गरीबों को दोस्त रखते थे, यतीमों को दोस्त रखते थे, बेसहारा लोगों को दोस्त रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारियों को बड़ी सवारियों पर तरजीह देते थे। लोग होते हैं कि कहते हैं बड़ी सवारियों में बैठे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में बैठेंगे। नबी करीम महंगी गाड़ियों और ऊंट की सवारी या बेहतरीन अरबी घोड़े की सवारी को पसंद नहीं करते थे, बल्कि खच्चर की सवारी को, घोड़े की सवारी को तरजीह देते थे। छोटी सवारियों को बड़ी सवारियों पर तरजीह दिया करते थे, ताकि इन गरीबों का दिल न टूटे और ये लोग अपने आप में एहसास कमतरी न पैदा करें और ये न समझे कि घोड़े पे बैठने वाले बुलंद होते हैं, गधे पे बैठने वाले छोटे लोग होते हैं, महलों में रहने वाले बड़े होते हैं और बोरिए पे बैठने वाले छोटे होते हैं, और बड़े बड़े किलों में रहने वाले अजीम इंसान होते हैं और झोपड़ियों में जिंदगी गुजारने वाले कमजोर इंसान होते हैं। तो नबी करीम ने क्या किया? असल में नबी करीम ये बता रहे थे, फजीलतों का मयार बड़ी सवारियां नहीं है, फजीलतों का मयार बड़ी हवेलियां नहीं है, फजीलतों का मयार दौलत का अंबार नहीं है, फजीलतों का मयार इख्तदार हासिल कर लेना नहीं है, कुर्सी पर बैठ जाना ये कमाल इंसानियत नहीं है, बल्कि इंसान का कमाल ये नहीं है, इंसान का कमाल उसके अखलाक है, इंसान का कमाल उसका किरदार है, उसका ईमान उसकी दौलत है। जिसके पास ईमान है, जिसके पास खुदा है, उसके पास सब कुछ है। ये तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि किसका कलाम है दरवाजे का, ये नबी करीम की जिंदगी का माहजल है, जो इमाम हुसैन के असल में किरदार है। नबूवत समझना है और सीरत रसूल को समझना है तो उनके इन आयनों में देखो, या हसन मुस्तफा से सुनो या हुसैन शहीद देखकर बोला। इमाम हुसैन कहते हैं, माजा वजद मन फकद व माजा फकद मन वजद। खुलासा है इरफान का कि उसने परवरदिगार उसने क्या खो दिया है जिसने तुझे पा लिया है, और उसने क्या पा लिया है जिसने तुझे खो दिया। पूरे मयारात को बदल दिया, पूरे नजरियात को बदल दिया। यही इसीलिए तो नबी आए थे, नबी आए थे उन मयारात को बदल दे, उस मीजान को बदल दे, उस तराजू को बदल दे कि जिसके अंदर दौलत तोड़ी जाती है, जिसके अंदर इख्तदार को तोड़ा जाता है। ये दौलत हो या इख्तदार हो, ये इंसान के बाहर की चीज है, लिबास इंसान के बाहर की चीज है, सवारियां इंसान के बाहर की चीज है। सवारियों के बेहतर होने से सवार नहीं बेहतर हो जाता, सवार को बेहतर होना है, सवारियों को नहीं। तब्दीली जो आना है, ये दुनिया ने जो तरक्की की है, ये जो नया तमद्दुन और ये नई तरक्कियां और ये नई टेक्नोलॉजी, ये जो कुछ भी तरक्की हुई है, ये किसकी तरक्की है? इसको लोग इंसानों की तरक्की बता रहे हैं, ये इंसानी तमद्दुन और इंसानी सिविलाइजेशन की तरक्की बता रहे हैं कि इंसान बड़ा हो गया, इंसान के अंदर तब्दीली आ गई, इंसान ऊंचा हो गया। ये 20वीं 21वीं सदी का इंसान है जो जहाज में बैठा है, रॉकेटों में बैठा है। ये वो इंसान है कि जो बुलंद हो चुका है, तरक्की याफ्ता इंसान है। वो कल का इंसान नहीं जो झोपड़ी में रहा करता था, ये कल का इंसान नहीं है जो साइकिल में घूमा करता था, अब ये जहाज में बैठने के काबिल हो गया है, ये हवाओं में उड़ने लगा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तब्दीलियां आई है, ये किसके अंदर तब्दीली आई है कि कल का इंसान ये कूड़े करकट को जमा करता था और जो है यही लकड़ियों को काट कर जो है वो खाना पकाया करता था, लेकिन आज गैस सिलेंडर आ गया है तो तब्दीली आई या नहीं आई? कल जो है मिट्टी के बर्तन में खाया करता था, आज चांदी और सोने के बर्तन में खा रहा है, तब्दीली आई या नहीं आई? ये तब्दीलियां हैं कि पहले कबीली के मकान में रहता था और अब जो है पहलों में रहने लगा, तब्दीली आई या नहीं है? ये लेकिन ये सारी तब्दीलियां आप जो महसूस कर रहे हैं कि कल पत्तों वाला लिबास पहनता था, आज जो है रेशमी लिबास पहन रहा है, तब्दीली आई या नहीं आई? कि कल गधे पे बैठता था, खच्चर पे बैठता था और आज जहाज में बैठ रहा है, कार में बैठ रहा है, तब्दीली आई? लेकिन ये तब्दीली इंसानियत की तब्दीली है या अशिया में तब्दीली आई है? सामान बदला है, इंसान नहीं बदला, बदला क्या है? मकान में तरक्की आई है। एक कल का मकान कवेली का था, आज का मकान हवेली में बदला है। तो तब्दीली मकान में आई है, आपकी जात में नहीं आई है। वही तो मैंने अभी कहा, सवारी बदली है, सवार नहीं बदला है। सवारियों में तब्दीली आई है, मकान में तब्दीली आई, लिबास में तब्दीली आई। तो लिबास तरक्की याफ्ता हुआ है, यानी लिबास जो कल पत्ते का था, कल जो काटन का था, आज वो रेशमी हुआ, तो क्या बदला? लिबास ही तो बदला है। बावर्ची खाने में तब्दीली आई है कि बावर्ची खाना बदला है, फर्श बदला है, जो बोरिया था वो कालीन में बदल गया। तो बोरिए ने तरक्की करके फर्श की जगह ले ली है, कवेलियों ने तरक्की करके जो है आरसीसी की छत में तब्दील हो गया है। तो अब जो तब्दीलियां आई हैं, वो तब्दीलियां जो आई हैं, वो इंसान की रिहायश की तब्दीलियां हैं, न कि इंसान की जात की तब्दीलियां हैं। वही जहालत जो कल थी वो आज भी मौजूद है। कितने ऐसे कौमें हैं कि जिनके पास अखलाकी तब्दीली नहीं आ सकी और इंसानी किरदार आगे नहीं बढ़ सका और इंसान के ईमान में तरक्की नहीं पैदा हो सकी। और अगर ईमान में तरक्की पैदा हो जाए तो ये हथियारों की दौड़ खत्म हो जाएगी। मोमिन हो तो बेतेर बिगड़ता है जाए। ईमान के मुकाबले में ना कल हथियार, ना कल के हथियार काम कर रहे थे, ना आज के हथियार काम कर रहे हैं। कल की टेक्नोलॉजी भी ईमान के सामने फेल हो गई थी, आज की टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई है कि इतने हथियार रखने वाले आज जलील हो रहे हैं। जिसके पास जितना असलहा है वो उतना जलील होता जा रहा है। दुनिया की चौथी बड़ी अस्करी ताकत रखने वाला मुल्क इसराइल है, जिसके पास क्या नहीं है, लेकिन सब कुछ रखते हुए भी चंद आवारा वतन और चंद कमजोर और चंद बे असलहा लोग, आप फिलिस्तीनी को ले लीजिए, क्या है उनके पास? हाथ में पत्थर है और कुछ नहीं है। लेकिन पत्थर रखने वाले जीत गए, हथियार रखने वाले नाकाम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हथियार काम नहीं आते हैं। हथियार की जो तरक्की हुई है, हजरी दौर था, जो तारीख शुरू होती है वो हजरी दौर से शुरू होती है, यानी पत्थर के दौर से शुरू होती है। कि और एक तारीख है मां कबले हजर, और एक तारीख जो तरक्की याफ्ता तारीख जो आपके सामने साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये शुरू होती है दौरे हजरी से, यानी पत्थर के दौर से। कि क्या किया? पहले के इंसानों ने पत्थर को तलाश कर हथियार बनाया। तो पहला हथियार जो बना वो पत्थर को तलाश के बनाया गया। उसके बाद पत्थर से जो है वो फौलाद की तरफ आया, और ये फौलादी हथियार आगे बढ़ते रहे। अब इसमें तरक्की होती रही तो बने, क्या नहीं बने, और मिसाइल बने, और उसके बाद अब जो है वो एटमी हथियार बने लगे, और केमिकल हथियार, मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनने लगे। तो जो तरक्की हुई है वो हथियारों की तरक्की हुई है, लेकिन जिन हाथ में हथियार आए हैं उन हाथों में तब्दीली नहीं आई है। तो होना क्या चाहिए? इस्लाम क्या करने के लिए आया? इस्लाम हथियारों को तरक्की देने के लिए नहीं आया था, बल्कि इंसानी किरदार को तरक्की देने के लिए आया था, ताकि इंसानियत आगे बढ़े, इंसान के खलूस में इजाफा हो, इंसान के ईमान और किरदार में इजाफा हो। इस्लाम इस चीज का नाम है। बेहतरीन लिबास पहनाने के लिए इस्लाम नहीं आया था, यानी इस्लाम जो है लिबास वाला इंकलाब नहीं है। मकानों में तब्दील करने वाला मजहब नहीं है कि इस्लाम आया था ताकि आपको अच्छे टमाटर खिला सके, अच्छे आलू खिला सके, अच्छा खाना खिला सके। ये और बात है कि इस्लाम के नतीजे में ये भी हुआ, लेकिन ये अलग से, ये उसका समझिए ये उसका सबका है इस्लाम का, कि इंसान इस्लाम के दायरे में आकर हर चीज को बदल लिया, अपनी तहजीब बदल गया, अपना تمدن بدل دیا اور کھانے پینے کے انداز. نبی کریم امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, بے سچے نبی سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی, تمہاری کیفیت کیا تھی, تم کیسے جیتے تھے, تم کیا کھاتے تھے, تم کیا پیتے تھے, تم گندی نالی کا پانی پیتے تھے, تم کیڑے مکوڑے کھاتے تھے, تم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے, تم وحشی لوگ تھے, تم وحشی عربوں کو نبی کریم کی بعثت کے بعد اس قدر تبدیلی آ گئی کہ قیصر و کسرا کا تمدن تمہارے سامنے زیر ہو گیا اور تم اس قدر بااخلاق ہو گئے کہ لوٹنے والے خود لٹانے لگے, زکات دے رہے ہیں کون, جو خود ڈاکو تھے جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے اب وہ زکات دینے لگے, جو دوسروں کی جان لیتے تھے وہ اپنی جان لینے بھی یہ میدان میں آئے جہاد کرنے کے لیے. اسلام نے جہاد رکھ دیا تو جہاد کیا مطلب ہے, ایثار اور قربانی کے لیے میدان میں مسلمان آ گیا ہے. یہ نبی کریم کا کارنامہ کہ کس طرح سے بدلا ہے دنیا کو, کس طرح سے تبدیل کر دیا ہے دنیا کو. نبی کریم نے امیر و غریب کا فرق مارا, نبی کریم نے امیر و غریب کی اور گورے اور کالے, رنگ اور بو اور نسل ہر چیز کا فرق نبی کریم نے مٹا دیا اور اس طرح سے بدلا, اس طرح سے بدلا کہ لوگوں کو یقین نہیں آیا کیا ایسا بھی کبھی عرب میں ہو سکتا ہے. کسی انسان نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد اتنی تبدیلی ہمارے اندر آ سکتی ہے کہ جب مسجد مدینہ تعمیر ہوئی اور مسلمان ہجرت کے جو لوگ کیے تھے حبشہ کی طرف وہ واپس آنے لگے, نئے نئے لوگ مسلمان ہونے لگے. اب یہ لوگ مسلمان ہونے لگے ان میں حبش والے بھی تھے, دور دراز کے لوگ بھی تھے, رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, مکان نہیں تھا, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, اس میں کتنی خواتین تھیں, کتنی بوڑھیاں تھیں, کتنے بوڑھے تھے, کتنے جوان تھے, کتنے بچے تھے, اب انہیں کون کھلاتا. یہ ازواج رسول کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ عرب میں اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی مشرکین کے پاس, یہ لوگ لڑ جھگڑ کے اپنی طاقت ختم کر دیا کرتے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہودی لوگ انہیں سود پر پیسہ دیتے تھے تو یہ لوگ کچھ کچھ تجارت کر, ایک آدھ آدمی ان سے کچھ تجارت کر سکتا تھا وہ بھی یہودیوں کے دیے ہوئے سود پر, اس کے بعد بھی سود کے پیسوں کے لینے والا تاجر کیا ترقی کر سکتا ہے, وہ بھی جو ہے وہ ضائع کر دیتا تھا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور جو لوگ تازہ مسلمان ہو رہے تھے ان میں بہت ساری بھوڑھی خواتین تھیں, ان سے کون شادی کرتا اور کون ان کو جو ہے اپنے گھر میں رکھتا, نامحرموں کو کون گھر میں رکھتا. نبی کریم نے کہا کہ آپ میں سے کون تیار ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کر لیں. اب آپ دیکھیے جو لوگ نبی کریم کی سیرت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اتنی شادیاں کی, آپ بتائیے مکے کی زندگی میں کتنی شادیاں نبی نے کی, جب نبی 40 برس کے تھے, جب نبی جوانی کے عالم میں تھے تو کتنی شادیاں نبی نے کی. نبی کریم 40 سال کی عمر میں مقبوض برسالت ہوئے ہیں, 40 برس کی عمر تک نبی نے سوائے ایک شادی کے دوسری شادی نہیں کی ہے. نبی نے مکے کی پوری زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم کے ازواج کا فلسفہ کیا ہے. یہ فلسفہ وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ کی چھوٹی تاریخ لکھ رہی ہے, بلکہ ازواج کا فلسفہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ان سے عقد کیا ہے جو خود ضعیفائیں تھیں. خود آپ ام سلمہ کو لے لیجیے اور جو ہے دوسرے نبی کریم کے جو ازواج ہیں ان کی آپ تاریخ پڑھیے کہ مدینے میں آ کر نبی کریم نے اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی بچیوں کو پال نہیں سکتے تھے. آپ خود عرب کا عرب کے اس دور کے حالات کا اندازہ لگائیے, اس میں امیر وہ جو کھاتا پیتا ہو وہ بہت بڑا امیر مانا جاتا تھا, غریب کا تو آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے. غریب تو اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس آٹا کھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی, وہ کھجور کی گٹلیاں پیس کے اس کا آٹا تھا. جواری کی روٹی اور جوار کی روٹی بڑی بات تھی, گیہوں کی روٹی تو نصیبی اس کو ہوتی تھی. آپ اس دور کی بات کیجیے, آپ کہتے ہیں دولت مند اور جو ہے کروڑ پتی, آج کے حساب سے کوئی کروڑ پتی اس زمانے میں نہیں تھا. तो बहरहाल उस जमाने की ना गुर्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस दौर को नबी ने ऐसा बदला, ऐसी तब्दीली उनके अंदर पैदा की कि तारीख देखती रह गई कि नबी ने कितना अजीम कारनामा पर अंजाम दिया। ऐसी ऐसी तब्दीली इंसानी जिंदगी में लेके आए कि आप देखेंगे कि एक मरतबा नबी करीम ने एक नौजवान को देखा, देख के कहा कि तू शादी क्यों नहीं कर ले। उसने कहा या रसूलल्लाह, आप देख रहे हैं मैं आप दोस्त हूं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं आपको था कि किसी एक मुल्क का रहने वाला, मैं सियाह दोस्त इंसान, मुझसे यहाँ अरब की कौन सी कौन सा वो शख्स होगा जो मुझे अपनी बेटी देगा। नबी करीम ने कहा कि जो अगर तुझे नहीं मालूम कि इस्लाम के आने के बाद तब्दीली आ गई है, क्या तू नहीं जानता कि हालात बदल गए हैं? अब वो बात नहीं है कि गरीब अमीरों से रिश्ता नहीं दे सकता, अब ईमान देखा जाएगा, अब किरदार देखा जाएगा, अब अखलाक देखे जाएंगे, अब इंसानियत देखी जाएगी, अब ये देखा जाएगा कि मोमिन मोमिना का कसूर है कि नहीं है, बाखलाक बाखलाक का कसूर है कि नहीं, नमाजी और आबिद इबादत गुजार और रोजेदार और हाजी, इनके मुकाबले में वो लोग जो वो खवातीन जो खुद इबादत गुजार है, वो खवातीन जो बातकवा है, वो खवातीन जो बा ईमान है, ईमान वालों का कसूर ईमान वाला, अखलाक वालों का कसूर अखलाक, ये नबी करीम ने किरदार पेश किया। मोमिन का कसूर कौन होता है? ये नहीं कि अमीरों का कसूर अमीर है। ये किरदार कहा नबी ने कहा कि नहीं, ये तबकाती फर्क हम नहीं मानते, हम दौलत को नहीं मानते, हम किरदार को अहमियत देते हैं, दौलत और इकतदार को नहीं, हम रंगो रूप को अहमियत नहीं देते, सीरत को अहमियत देते हैं, सूरत मयार में जब सीरत और सूरत टकराएंगे तो तरजीह सूरत को नहीं दी जाएगी, सीरत को दी जाएगी। ये है इस्लाम। लेकिन भटकने वाला मुसलमान जो कल भी मुनाफिक की सूरत में था, आज भी मुनाफिक की सूरत में है, वो लोग हैं कि जो सूरत को सीरत पे तरजीह देते हैं, जो ईमान को बेईमानी पे तरजीह देते हैं। तो मालूम ये हुआ कि नबी करीम ने कहा जा उस शख्स के पास और उसका हाथ मान। तो वो शख्स जो एक बार जाता है, जाके जो है वो लड़की का हाथ मांगता है और जो है नबी करीम का पैगाम पहुंचाता है। वो शख्स दौलतमंद अरब का जो है मशहूर पैसे वाला इंसान, वो जब ये रिश्ता देखता है तो थोड़ी देर के लिए तजद्दुद का शिकार होता है। जब ये बात घर में पहुंचती है तो लड़की कहती है जब नबी ने भेजा है तो इस रिश्ते को मत ठुकराइए, मैं राजी हूँ। ये वो बात है कि इस्लाम का ये वो मयार। तो अब जब बाप ने देखा कि बेटी राजी है ऐसे शख्स से कि जो सियाह पोस्ट है, जो जो जिसका रंग हमारे रंग से नहीं मिलता, जो दौलतमंद नहीं है, गरीब है, फकीर है और अस्हाबे सुफा में से है, चबूतरे पे सोने वाला, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई दार नहीं है, जिसके पास कोई दौलत और बैंक बैलेंस नहीं है, ये सब चीजों को नजरअंदाज करके वो ये रिश्ता जोड़ देता है। तो ये जो तब्दीली आई, ये जो रिश्ता जुड़ा, तो ये दर हकीकत नबी करीम की उन मेहनतों का नतीजा था कि जिसके पीछे नबी पत्थर खाए थे, जिसके पीछे नबी रकम बर्दाश्त किए थे और मुसीबतें बर्दाश्त की थी, इसलिए ताकि इंसानी अखलाक में इस कदर तब्दीली लाई जा सके, जहां पर तबकाती फर्क मिट जाए, जहां अरब और अजम का फर्क मिट जाए, अमीर और गरीब का फर्क मिट जाए, गोरे काले का फर्क मिट जाए, इस फर्क को खत्म करने के लिए नबी ने इतना बड़ा इतनी बड़ी जहमतें बर्दाश्त की थी ताकि ऐसा इंकलाब लाया जा सके। लाया नबी ने ऐसा इंकलाब हुआ। तीन दिन गुजर गए लेकिन शौहर ज़ौजा के पास नहीं पहुंचता। नबी करीम को खबर दी जाती है कि आपने जो रिश्ता भेजा था वो शख्स तो मायल ही नहीं है। नबी करीम ने बुला के पूछा जो अगर ये क्या सुन रहा हूं, तो जो अगर ने कहा या रसूलल्लाह, इस्लाम की नेमत से जो मुझे इतनी नेमतें मिली हैं कि मैं उसका शुक्रिया नहीं गुजार रहा हूं, میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں نے نظر کی تھی کہ 3 دن تک بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، یہ جو رشتہ آپ نے دلایا، یہ جو تبدیلی آپ نے دلایا، اور اسلام کے نتیجے میں آج جو مجھے عزت و افتخار ملا ہے، آج جو میں خاندان والا، ایک گھر والا، ایک دولت مند انسان بنا ہوں، یا جو کچھ بھی میرے اندر تبدیلی آئی ہے یہ اسلام کی وجہ، کیا میں اسلام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں؟ اس خدا واحد کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے ہم جیسے کمزوروں کو طاقتور بنا دیا، ہم جیسے دور افتادہ لوگوں کو عرب کے بڑے بڑے خاندانوں سے جوڑ دیا، تو کیا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے یہ تبدیلی لائی، نبی خود ماحول میں ڈھنے نہیں بلکہ ماحول کو نبی نے بدل دیا، یہ وہ ذات تھی نبی کریم کی۔ نبی کریم نے کہا کہ نفس کی کیفیت مومن کی نہیں بدلنی چاہیے، چاہے دولت آئے، چاہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہی رہے گی، یہ اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہے گا، یہ نشے و فراق تو آتا ہی رہے گا، کبھی انسان غریب ہوگا تو کبھی امیر، کبھی انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا تو کبھی شاہانہ لباس پہنے گا، یہ لباسوں کی تبدیلی آتی رہے گی، لیکن جو چیز نہیں بدلنی ہے وہ ہے انسان کا کردار، جو نہ بدلنے والی چیز ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا نفس ہے، اس کو نہیں بدلنا چاہیے۔ مومن کا دل وہ ہے کہ جو نہ بیجا خوشی کا شکار ہوتا ہے اور نہ بیجا غم کا شکار ہوتا ہے، نہ غموں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اور نہ خوشی میں جانے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو خوشی میں جانے سے باہر ہو رہے ہیں، اپنے حدود کو توڑ رہے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو سیرت نبی کو پامال کر رہے ہیں، جو کردار نبی کو پامال کر رہے ہیں، جو اسلامی قوانین کو پامال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسراف دین مبین اسلام میں حرام ہے، فضول خرچی دین مبین اسلام میں حرام ہے۔ اب جو انسان خوشی میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ قلب مومن وہ ہے جس کی نہار نبی اور رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نفس یعنی خواہشات کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس وقت بھی مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت آتی ہے، وہ اس وقت بھی مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت چلی جاتی ہے اور جب وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ جدید مفکرین کا یہ دعویٰ ہے، مارکس اور لینن کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے، زمانے کے بدل جانے سے انسان بدل جاتا ہے۔ جب چھوٹی سواری پر بیٹھنے والا انسان بڑی سواری پر بیٹھتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کے سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے اندر جوہری تبدیلی آ جاتی ہے، بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے، اب وہ ویسا رہ ہی نہیں سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تاریخ بشریت میں انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ حالات کے بدلنے سے ضرور بدلتا ہے، کہ ایک بوریے پر بیٹھنے والا انسان اگر محل میں پہنچتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سائیکل پر چلنے والا جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ اس آسمانوں پہ اڑنے لگتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہی انسان اب بھی باقی رہے جو سائیکل پہ بیٹھتے وقت تھا، وہی ذہنیت، وہی افکار، وہی نظریات، وہی انسان، وہی رحم دل، وہی کریم، اب وہ نہیں رہتا۔ اب وہ طاقت آنے کے بعد اب کمزور انسان کمزور نہیں رہتا، بلکہ وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، لِيَطْغَى عَنْ رَاهُ اسْتَغْنَى، کہ جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو طغیان کرنے لگتا ہے۔ یہی ہے اصل، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے اصل، یہی ہے حقیقت، اس کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت نہیں پائی جاتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حالات بدلے اور انسان نہ بدلے، زمانہ بدل جائے اور انسان نہ بدلے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والا انسان اگر محل میں پہنچ جائے تو اس کی فکر نہ بدلے, اس کا ذہن نہ بدلے, اور اس کی نظر یاد نہ بدلے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سائیکل پہ بیٹھنے والا اگر جہاز میں بیٹھ جائے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی فکر بدل جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی, یہی جدید مفکرین کے نظریات جب چوکھٹے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ پر آتے ہیں تو گر کے کرچی کرچی ہو جاتے ہیں اور یہی نظریات ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ دنیا نے دیکھا کہ حالات بدلے مگر علی نہیں بدلے, زمانہ بدل گیا مگر علی نہیں بدلے. وہی علی رہے کہ طاقت آئی مگر علی نہیں بدلے, لشکر آیا مگر علی نہیں بدلے. وہی علی جو گوریے پر بیٹھتے تھے تو جو کیفیت تھی وہی کیفیت تخت آنے کے بعد بھی رہی, یعنی علی نہیں بدلے. جو روٹی علی نے خلافت سے پہلے کھائی تھی وہی روٹی علی نے خلافت کے پاس بھی کھائی, اور جس گوریے پر علی خلافت سے پہلے بیٹھے تھے وہی گوریے پر خلافت کے بعد بھی بیٹھے. صلوات دنیا میں فقیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انسان دنیا میں غریب ہو ہی نہیں سکتا جو انسان معتدل راستے کو اپنا لے. اس لیے کہ حالات میں کبھی اتار آئے گا کبھی چڑھاؤ آئے گا. جب حالات گرنے لگے تب بھی اس کی روش وہی رہے, جب حالات بڑھنے لگے تب بھی وہی رہے, تاکہ اس کا جبران ہوتا رہے اور اس کی کیفیت میں تبدیلی نہ آ سکے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان میں تبدیلی نہ آئے. ہاں یہ چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن اس کا مزاج نہ بدلے, وہ ذہنیت نہ بدلے. جب انسان غریب ہوتا ہے تو غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے, جب امیر ہو جاتا ہے تو غریبوں کو دھتکار دیتا ہے. یہ طبیعت نہ ہو, یہ مزاج نہ ہو. ہاں لباس کو بدل سکتا ہے, مکان بدل سکتا ہے, اس لیے کہ تبدیلی مکان میں آ رہی ہے, اس کی کیفیت میں تبدیلی نہ, یعنی اس کے بدلنے سے وہ نہ بدلے. سب کچھ بدل جائے مگر وہ نہ بدلے, انسان نہ بدلے. یہ ہے عزیزان گرامی, جس وقت انسان کمزور ہو اس وقت الگ نعرے لگائے, اور جس وقت طاقتور ہو جائے اس وقت الگ نعرے لگائے, اس وقت جو ہے پالیسی بدل دے پوری کروا دے. ایسا نہ ملک ترقی کرتا ہے, نہ ایسی قوم ترقی کرتی ہے, نہ ایسا فرد ترقی کر سکتا ہے جو حالات کے بدلنے سے اس کی پالیسی بدل جائے. دنیا میں ایک ہی ملک ایسا ہے عزیزان گرامی, وہ ملک اس لیے ایسا ہے چونکہ وہ ملک علی کی پیروی کا دعویٰ کر رہا ہے. اتنے ممالک ہیں دنیا میں جن کی پالیسیاں بدلتی ہیں, لیکن ایک ہی ملک ایسا ہے جس کی پالیسی نہیں بدلی. 30 سال اور 32 سال پہلے انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اس وقت وہ لوگ غریب تھے کمزور تھے, لیکن آج 35 سال کے بعد ایران بدل چکا ہے. ایران کی ٹیکنالوجی آسمان کو چھو رہی ہے, آسمانوں سے آگے جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی وہ غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے. آج ایران کو آفر آ رہا ہے, میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, کہ تم صرف اسرائیل کا ساتھ دینا شروع کر دو اور فلسطینیوں کی موافقت چھوڑ دو, ہم تم کو ہر قسم کی آزادی دینے کے لیے. آپ اسرائیل دشمنی پالیسی ختم کر دیجیے, دنیا کی ہر چیز ہم آپ کے سامنے ڈال دیں گے اور آپ کو منع نہیں کریں گے. اگر آپ اسرائیل کے دوست بن جائیں گے تو پوری دنیا آپ کی ہو جائے گی, اور دنیا کا سارا عیش و آرام آپ کے حصے میں آ جائے گا. پھر آپ غریب ملک نہیں رہے گا. وہ ملک جو اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں وہ غریب نہیں رہتے, ان پر حملے نہیں ہوتے, حملے ان پر ہوتے ہیں جو اسرائیل سے دشمنی اختیار کرتا ہے, اور اس پر اقتصادی ناکابندی ہوتی ہے جو اسرائیل سے رشتہ توڑ لیتا ہے. تو جب وہ کمزور تھے تب وہ باتیں کرتے تھے, آج طاقتور ہو گئے تو طاقتوروں سے رشتہ جوڑنا چاہیے, کمزوروں سے رشتہ توڑ دینا چاہیے. آج ایران کو کہنا چاہیے کہ میں وہ طاقت بن گیا ہوں کہ جو آسمانوں تک پرواز کر رہا ہوں, میرے राकेट आसमानों को छीन रहे हैं। मैं इस वक्त अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर रहा हूँ। मैं अभी दो दिन पहले की गली की खबर बल्कि आज ही की खबर ये अखबारों में छपी है कि ईरान में फिर से अमेरिका का जासूसी तैयारा जो बगैर पायलट के घूमता है उस ड्रोन तैयारे को फिर से जमीन पे गिरा लिया है। ये टेक्नोलॉजी जिसने जमीन और आसमान के गुलाबों को मिला दिया है और बता दिया है कि अली और रसूल के पैरोकार कौन होते हैं और बाबे मदीनतुल इल्म पर सजदा करने वाले कौन होते हैं। लेकिन पॉलिसी नहीं बदली। वो पॉलिसी क्या है? गरीबों की हमदर्दी। आज भी वो हमास के साथ है। हमास क्या था? फिलिस्तीन के वो कमजोर और लाचार जवान जिसको अमेरिका ने धुतकार दिया था, जिसके इसराइल ने धुतकार दिया था, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय खालिस ईमान के। वो देख रहे थे कि पीएलओ जो यासर अरफात की जमात थी उसको इसराइल ने खरीद लिया था। यासर अरफात को यहूदी औरत से शादी करवा कर अरफात को पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया था और पूरी दुनिया की हमदर्दियां यासर अरफात को मिल रही थी। लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। खुद यासर अरफात की जिंदगी में ये एक ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल नौजवान बच्चे थे। ये आज वो इस्माइल हनिया आप देख रहे हैं, ये जो आप खालिद रसूल देख रहे हैं, ये जो आप अब्दुल्ला रमजान देख रहे हैं, ये जो फलस्तीन और हमास के बड़े बड़े लीडर देख रहे हैं, ये कल के कमजोर नौजवान थे। उन्होंने एक बूढ़े शख्स को शेख यासीन को अपना सरदार बनाकर इनको साथ लेकर एक तहरीक शुरू की इन ताकतवरों के खिलाफ, इन बागियों के खिलाफ जो अमरीका और इसराइल के हाथ में बिक रहे हैं, अपने मुल्क को तहफ्फुज करने के लिए, अपनी गैरत और अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन्होंने तहरीक शुरू की। तो वो कमजोर बूढ़ा शेख यासीन उसको उसके ऊपर ऐसे राकेट बरसाए कि उसकी जान ले ली इन लोगों ने, जबकि वो कमजोर इंसान था, व्हीलचेयर पे चलने वाला इंसान, एक बूढ़ा जरीफ इंसान। उससे अमेरिका इसराइल आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी रखने वाले मुमाले, इतनी ताकत रखने वाले मुमाले जिसको आप देख के बड़ी बड़ी हुकूमतें डरती हैं, लेकिन ये बड़ी हुकूमतें इस कमजोर शख्स पे डर गई है। राकेट से मार के शहीद कर दिया शेख यासीन, शहीद किया गया। जान अपनी तभी मौत से नहीं मरा वो शख्स, यानी इनको इतनी जरूरत पड़ गई थी उस शख्स की जान लेना, यानी वो कमजोर इंसान हुकूमतों को हिला रहा था और उन्हें कौन ताकत दे रहे थे? ईरान उनको ताकत दे रहा था। अगर आज हमास के पास जो कुछ भी है, ये बात है इस्माइल हनिया ने कही अपनी जबान से कि हमारे पास आज जो कुछ भी है वो ईरान का दिया हुआ है, कि ईरान ने हमारा आज तक साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कि ईरान जानता है कि आज जो दुआएं हमारे साथ है वो यतीमों की दुआएं हैं, बेवाओं की दुआएं हैं, कमजोरों की दुआएं हैं, इन्हीं दुआओं के सहारे वो यहां तक पहुंचा है। क्या वो उन दुआओं को फरामोश कर देगा? क्या वो यतीमों की आवाजों को भुला देगा? तो ईरान ने कहा हम उसको नहीं भुलाए, अगर चाहे कि पूरी दुनिया हमसे इक्तसादी बायकॉट कर दे, हम शेरे अबू तालिब में रहना जानते हैं, हम सख्तियां झेलना जानते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया ये सब क्यों मनाया थे जाने गिरानी? ईरान तो कल भी ईरान था, ईरान आज भी ईरान है, लेकिन 32 साल पहले वाला ईरान जिद्दत की खाई में गिरा हुआ था, अमेरिका के जूतों में पड़ रहा था, लेकिन आज वही ईरान अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तो ये किसकी सीरत है? ये सीरत मुस्तफा है, ये सीरत मुर्तजा है कि अगर इस सीरत पर कोई इंसान चलने लगे, कोई कौम चलने लगे, तो वो कौम आसमान की बुलंदियों को छू लेती है। आपकी ये जिंदा मौजूद है। देखिए ये वो बातें नहीं है जो तारीख में कभी फरसुदा तारीख में लिखी हुई हो और उनमें से वाकयात को पेश किया जा रहा हो, आप कहें कि हो सकता सही हो सकता गलत हो। ये आज की दुनिया में चलने वाली चीज नहीं है। ये किरदार, ये ईमानदारी, ये नेकियां, ये जो है तारीख की बातें हैं, ये दुनिया में चलने वाली नहीं है, ये दुनिया की सियासत में सब काम आने वाले नहीं है। दुनिया में वो इंसान नाकाम हो जाता है जो ईमान से काम लेता है, आज का जहन ये कह रहा है। तो इन जहनों को आज ये बताया जा रहा है कि जो कौम एक हो जाती है, एक लीडर के पीछे होती है, आपस में एक दूसरे से मिलती है और ताकतवर होती है, वो कौम इज्जत हासिल करती है। वो कौन ताकत हासिल करती है। आज आप जाइए, शिया धंधा कमाल नहीं है, आप लोगों ने शिया होने की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं शिया होने की वजह से नहीं, शिया वो जो सीरत मुस्तफा पे चले, शिया वो जो सीरत अली मुर्तजा पे चले, और वो शिया नहीं जो शिया तो कहते हैं लेकिन न मुर्तजा की पैरवी न मुस्तफा की पैरवी बल्कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, और साथ में मजलिसे भी है और इमाम बाड़े भी है, इमाम बाड़े ही नहीं जिनके पास खुद रौज़ा करबला है वहां जाइए, जहां पर नजफ अशरफ है, जहां पर रौज़ा अमीरुल मोमिनीन है, उन शियों की हालत देखिए। आज इराक भी आपकी नजरों के सामने, ईरान भी आपकी नजरों के सामने, ज़ियारत के लिए जो जाते हैं वो ईरान भी जाते हैं इराक भी जाते हैं, उनसे पूछिए कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों अक्सरियत शिया मुल्क है ना, वो भी अक्सरियत शिया है, यहाँ भी अक्सरियत शियों की है, मेजोरिटी शियों की इराक में, करबला में नजर में तो 99% बल्कि 100% जो है वो शिया है, लेकिन वहां की हालत क्या है। करबला में 20 घंटे इस वक्त लाइट नहीं है, 20 घंटे पूरे इराक में इस वक्त, यानी वही फर्क है जो अंधेरे और उजाले का फर्क होता है, एक मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है, एक मुल्क जो रोशनी से झटमगा रहा है, आपकी निगाहों के सामने, कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये वो बात नहीं है जिसको आप झुटला दे सकते, आप कहीं झूठ बोल रहे हो, जाओ जाके खुद अपनी निगाहों से जाके देखो, ये भी एक मुल्क है, वो भी एक मुल्क है, यहाँ टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है, जो कुछ भी सरमाया है उस पे गैरों का कब्जा है, और यहाँ की कोई एक मिल्कियत भी ऐसी नहीं है कि जिसके एक जर्रे पर भी गैर का कब्जा हो, और वहां पर पूरे गैर ममालिक के लोग उस मुल्क को कैप्चर कर चुके हैं, पूरा कब्जा कर चुके हैं, वो भी शिया ये भी शिया, फर्क क्या है, फर्क ये है कि उनके दिल आपस में बटे हुए हैं। देखो यहां कहते हैं ना छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, वैसे ही इराक के अंदर भी है, यानी करबला वाले और नजफ वाले, नजफी कहते हैं हम नजफी हैं, करबला वाले कहते हैं करबलाई है, क्योंकि वहां शिया सुन्नी तो है नहीं, ये शहरों में तो कुछ शिया सुन्नी का फिरड़ा नहीं है, तो लिहाजा जो नजफी होता है वो करबलाई को बर्दाश्त नहीं करता, जो करबलाई है वो नजफी को बर्दाश्त नहीं करता, इन दोनों को बसरे वाले बर्दाश्त नहीं करते, और बसरे वालों को जो है हिलने वाले बर्दाश्त नहीं करते या करकुक वाले बर्दाश्त नहीं करते, यानी आपस में इनका इतना बड़ा इख्तलाफ है कि जब से कूफे और करबला के दरमियान में अगर आप तेज रफ्तार कार से जाएंगे तो एक घंटे से भी कम में पहुंच जाएंगे, नजफ और करबला में इतना कम का फासला है कि लोग पैदल जाते हैं मन्नत करके, तो जो फासला पैदल जाने से तय हो सकता है उन दो शहरों को क्या मिलाया नहीं जा सकता, और अब ये शहर तो तरक्की होने की वजह से मिल रहे, लेकिन वही कूफे की ज़हनियत वही करबला की है कि यहाँ के लोग वहां के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, वहां के लोग यहाँ के लोगों को बर्दाश्त, उस गली के लोग इस गली को बर्दाश्त नहीं करते, इस गली के लोग उस गली को बर्दाश्त, इसलिए कि ये लोग इत्तेहाद को पसंद नहीं करते, इख्तलाफात को सीने से लगाए रखते हैं, इख्तलाफात को बाप दादा की विरासत समझते हैं, और इत्तेहाद को इत्तेहाद के दुश्मन हो जाते हैं, टूटे हुए मकानात को गिराने वाले लोग पुरानी तहजीबों का जनाजा क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं कहते कि हमारे बाप कवेली के मकान में रहते थे हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं कहते, कहते कि हमारे बाप का जमाना था वो कवेली में रहते थे, ये हमारा जमाना है हम हवेली में रहते हैं, तो हमारे बाप दादा ने छोटी बड़ी पार्टी बनाई थी, ये उनका दौर था, लेकिन हम उसको क्यों उस फरसूदा बिल्डिंग में नई नस्ल के जगमगाते हुए बच्चे वहां पर हैं, और पैदा होते ही उनको इख्तलाफ का तौफ उनकी गर्दन में डाल के झुका दिया जाए कि तुम इनसे मिलना उनसे ना मिलना, तुम इस पार्टी में पैदा हुए हो तुम उस पार्टी में पैदा हुए, ये इस्लाम नहीं है, ये कुफ्र की अलामतें हैं। तहज़बुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शक्ता, ये देखने में तो जुड़े हुए, कुरान कह रहा है कुफार की अलामत बताकर कि कुफार किसे कहते हैं, काफिर नाम रख लेने से कोई काफिर नहीं हो जाता, और मोमिन नाम रख लेने से कोई मोमिन नहीं हो जाता, कि कोई शख्स अपना नाम मुत्तकी रख ले, मोमिन रख ले, जन्नती रख ले,
तो जन्नती नाम रख लेने से इंसान जन्नती नहीं हो जाता है, बल्कि किरदार जन्नती भी बनाता है, किरदार दोजखी भी बनाता है। अगर ये बात है तो कुरान कह रहा है काफिरों को पहचानने का तरीका यह है कि उनके मोहल्ले में जाओ, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, उनको देखने में तुमको दिखेगा वो लोग एक हैं लेकिन उनके खुलूब आपस में बटे हुए। यानी ऐसा नहीं है कि वो एक जगह जमा नहीं होते। आप हैदराबाद में जाइए, अखबारी मिलेंगे, उसूली मिलेंगे, तालिबानी मिलेंगे और जो है ना उद्दानी मिलेंगे, पूरे पूरी कौमें वहां पर हैं। लेकिन ये सारे की सारी कौमें, अगर आप हैदराबाद की मिसाल दें, मैं यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वहां के बारे में ज्यादा जानता हूँ, आप वहां वलीमे में आइए, एक ही टेबल पे जो है अखबारी भी बैठा रहेगा, उसूली भी बैठा रहेगा, सारे फिरके एक ही दस्तरखान पे बैठे रहेंगे। मतलब ये है कि खाने पे झगड़ा नहीं है, झगड़ा मजलिस पे है। हाँ, आप कहिए कि छोटी पार्टी वाले हैं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे वलीमे में, लेकिन वलीमे के दस्तरखान पर छोटी पार्टी वालों के पास बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी के दस्तरखान पर छोटी पार्टी, लेकिन इनकी मजलिस में वो नहीं आएंगे, उनकी मजलिस में ये नहीं आएंगे, इनके अलम में वो शरीक नहीं होंगे, उनके जुलूस में ये शरीक नहीं होंगे। यानी अपने जब जाती दावतें होती हैं तो सब शरीक होते हैं, लेकिन जब मौला का मामला आता है तो इख्तलाफ शुरू हो जाता है। अगर आप कैलेंडर से मुहर्रम और सफर को निकाल दीजिए तो इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, मजलिस को खत्म कर दीजिए, इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। यानी सारा झगड़ा इमाम हुसैन की जात से है, सारा झगड़ा मुहर्रम से है, सारा झगड़ा मजलूम के गम से है, सारा झगड़ा। अगर आप वाकई झगड़ा है तो आप कहिए नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए हैदराबाद में भी सही है, आप खाना रख के दावत दीजिए, अब मजलिस में जो है ना बिरयानियों के देख चढ़ा दीजिए इधर से लेके उधर तक, और आप फिर मुझे पढ़वाइए, हैदराबाद में कह रहा हूँ, पूरा मजमा भर जाएगा। अगर बिरयानी रख के दावत देंगे आइए मजलिस में तो कहेंगे ठीक है आएंगे, चाहे कोई भी पढ़े। मौला की मजलिस है, कोई भी पढ़ने तो हमसे क्या मतलब है, जिक्र मौला है, जिक्र मौला में कोई भी पढ़ने तो हमसे क्या मतलब है। लेकिन अगर बिरयानियां ना हो, तबर्रुक ना हो, और उस वक्त आप बुलाइए आइए मजलिस में शिरकत करने के लिए, तो कौन पढ़ रहा है, अरे वो दुश्मन है मौला की मजलिस में, हम क्यों आएंगे। यानी अगर बिरयानी ना हो तो दुश्मन मौला हो जाता है जाकिर, और अगर बिरयानी हो, तबर्रुक हो, तो वही जाकिर फिर उसकी जो है वो दुश्मनी मौला खत्म हो जाती है, वो दोस्त बन जाता है। तो असल दोस्ती आपको देख से दोस्ती है, ना जाकिर से दोस्ती है, ना मजलिस से दोस्ती है, असल दस्तरखान से दोस्ती है। मुहिब्बान देर है ना, मुहिब्बान देर, मुहिब्बान जो है वो चमचा और कबीर के इसके मुहिब है। ये जब जो यहाँ पे नजर आता है जैसे ये हमारा ही घर नजर आ रहा है, जहां पे बिरयानी नजर आती है जैसे ये हमारा ही घर है, अब कोई इख्तलाफ नहीं होता। ये उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते, तबरुक खाते वक्त क्यों नहीं सोचते कि इसके घर में हम क्यों आए, उस वक्त क्यों नहीं सोचते इसकी मजलिस में हम क्यों आए। गैरत खत्म हो जाती है, गैरत का जनाजा उड़ जाता है, हमियत खत्म हो जाती है, इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहां पर सूखा मामला हो, जहां पर जो है सिर्फ मजलिस हुसैन हो, वहां पर आप बुलाए, उनके इमाम बाड़े में हम नहीं आएंगे, हमारे इमाम बाड़े में वो नहीं आएंगे। यही झगड़ा करने वाले जब जो है वलीमे में आते हैं, जाति कोई प्रोग्राम में आते हैं तो खत्म कर देते हैं। तो ये क्या मतलब है इसका, इस पर सोचने की जरूरत है। एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से कहा आइए हमारे घर में वलीमे की दावत है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। कहा आप क्यों नहीं आएंगे, कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ अमीर लोग आते हैं, गरीबों को तुम बुलाते नहीं हो। तो कहा कि मैं गरीबों को जानता नहीं हूं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं गरीबों के साथ आऊंगा। एक शख्स ने कहा आज अमीरों का दिन है, कल गरीबों का दिन है, वलीमे में होता नहीं अपने पास एक दस्तरखान अमीरों के लिए एक गरीबों के लिए, हैदराबाद में तो ऐसा होता है, एक जो है खानदान वालों के लिए, एक जो है गैर खानदान वालों के लिए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा जिस दिन गरीबों को बुलाओगे उस दिन मैं आऊंगा। तो आप ये समझिए कि अगर अमीरुल मोमिनीन को दावत देना है तो आपको गरीबों को दावत देना होगा कि इन्हीं गरीबों के बीच में नहीं आएंगे, अमीरों के बीच में नहीं आएंगे, उनके बीच में नहीं आएंगे जो पेट भरे लोग। आपको खाना उनको खिलाना है जो गरीब है, आपको खाना उन्हें खिलाना है कि जो आपके पास मेहमान बन के आया है, जो आपके मजहब का भी नहीं है लेकिन आपके पास मेहमान बन, उसको उसका फरीदा है। यानी खुद ही पकाओ खुद ही खाओ, खुद ही पकाओ खुद ही खाओ, कब तक चलेगा ये? सीरत मुस्तफा पर अमल कब होगा? सीरत अहले बैत पर अमल कब होगा? कब वो तारीख आएगी कि जब हम अपने इफ्तार की रोटियां उठाकर यतीमों में और गरीबों में तकसीम कर देंगे? जब तक ये कैफियत नहीं पैदा होगी, इस दस्तरखान से उठने वाले बच्चे करबला वही बच्चे बनाएंगे जो बच्चे इस दस्तरखान पे पले हैं। माविया के दस्तरखान पे पलने वाला बच्चा यजीद तो बन सकता है, हुसैन नहीं बन सकता। फातिमा जहरा के दस्तरखान पे चलने वाला बच्चा हुसैन ही बन सकता है। अगर हुसैन नहीं तो हसन बनेगा, हसन नहीं तो हुसैन बनेगा, हुसैन नहीं तो मोहसिन बनेगा, लेकिन कोई भी हुसन से खारिज नहीं होगा। बेटी पैदा होगी तो जैनब कहलाएगी, दूसरी बेटी पैदा होगी तो उम्मे कुलसूम कहलाएगी, सिलसिला नहीं टूटेगा शराफत का, क्योंकि दस्तरखान फातिमा का दस्तरखान। इस दस्तरखान पे रोटी खाई नहीं जाती, खिलाई जाती है। ये वो दस्तरखान है कि जहां पर रोटी खाने के लिए नहीं बिछाई जाती, खिलाने के लिए दस्तरखान बिछाया जाता है। वहां पानी इसलिए नहीं भरा जा रहा है कि बच्चे पिएंगे, पानी इसलिए ज्यादा रखा जा रहा है कि रास्ते में कोई भटका हुआ मुसाफिर तो नहीं आ जाएगा, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन प्यास से निढाल हो जाए और हम उसको पानी ना पिला सकें। हुसैन ने क्यों इतना पानी अपने पास जखीरा करके रखा था? ताकि रास्ते में अगर 1000 का दस्ता खुर का मिल भी जाए फटके हुए सहरा में, कोई काफिले को देखकर अगर खुश हो जाए और मांगने के लिए पानी आए तो क्या हम प्यासे को पिला सकेंगे या नहीं? हाँ, इमाम हुसैन के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ पिला दिया। कोई तारीख में ये नहीं लिखा हुआ है कि अब इमाम हुसैन ने कहा कि थोड़ा पानी बचा लो, बात इसलिए कि काफिले में सकीना भी है, काफिले में रुकैया भी है, काफिले में मोहम्मद बाकर भी है, काफिले में छोटे छोटे बच्चे भी है, लेकिन कहा मस्जिदें खाली कर दो, अगर ये लोग पी चुके हैं तो इनके घोड़ों का सैराब कर दो। इमाम हुसैन ने जानवरों का सैराब कर दिया और मस्जिदें खाली कर दिए गए। इमाम हुसैन करीम इब्ने करीम के बेटे थे, सब कुछ राह करबला में लुटा दिया, सरमाए हयात लुटा दिया हुसैन ने। सहरा में सबसे कीमती चीज जो जान बचाने के लिए होती है वो पानी होती है। मुसाफिर सब कुछ तो दे सकता है लेकिन पानी नहीं दे सकता, अपने गले का जेवर तो दे सकता है सहराए अरब का मुसाफिर, लेकिन अपने मशकीजे को खाली नहीं कर सकता। हुसैन ने जेवर से कीमती चीज दी है हूर के लश्कर को, और कौन से लश्कर को? जो रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया, रास्ता रोकने के लिए आया है। लेकिन हाँ, शबे आशूर गुजरी, जब सुबह आशूर नमोदार हुई तो वही हुर जिस पर इमाम हुसैन ने एहसान किया था, आज वही हुर सर को न्योड़ाया हुआ, हाथों को बांधा हुआ चला रहा है कि किस चीज ने हुर को लाया? ताकत नहीं ला सकती थी, उपवत नहीं ला सकती थी, हुर के गले में फंदा डाल के नहीं फेंका जा सकता था, लेकिन खुद हुर अपने सर को झुका के कौन सी चीज थी जो ले आ रही थी हुर को हुसैन के लश्कर में? वो था हुसैन का किरदार, वो था हुसैन इब्ने अली के पास सीरत रसूल का होना। इसीलिए तो इमाम हुसैन कहते हैं मैं करबला जा रहा हूँ सीरत नबी बचाने के लिए, सुन्नत नबी का तहफ्फुज करने के लिए। नबी की सुन्नत यही है, नबी की सीरत यही है। हुसैन बता रहे थे तुमने अगर मोहम्मद मुस्तफा को नहीं देखा है तो आओ हुसैन को करबला के मैदान में देखो। हुसैन ابن علی کے پاس کوئی صحیح اصحاب کا جمعہ غفیر جیسے رسول اکرم کے گرد میں تھا کہ رسول کے پاس سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، مقداس بھی تھے، عمار بھی تھے، امام حسین کے لشکر میں سیاہ پوش جون بھی ہے اور ہلال بھی ہے، امام حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر بھی ہے، مسلم ابن اسدہ بھی ہے، آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، اور سب امام حسین کے اطراف حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یہ لشکر ہے حسین کا۔ اور آپ کو بیان کروں، وقت نہیں ہے، پھر کبھی عرض کیا جائے گا کہ اب اس لشکر کا علمدار کس کو بنایا گیا ہے؟ اس لشکر کا علمدار عباس علی کا بنایا گیا ہے۔ عباس کو طاقت دیکھ کے علم نہیں دیا گیا، قوت دیکھ کے علم نہیں دیا گیا، بلکہ علم دیا گیا ہے کردار عباس دیکھ کر، اطاعت عباس دیکھ کر، معرفت عباس دیکھ کر، فقاہت عباس دیکھ کر، شرافت عباس دیکھ کر۔ اس لیے کہ لشکر میں حافظان قرآن بھی ہے، لشکر میں اخلاق کی بلندیوں پر فائز اشخاص بھی ہے، اور لشکر والوں میں فقیہان عصر بھی ہے۔ ان کی موجودگی میں علم اس کو دیا جائے گا جو کردار میں سب سے بلند ہوگا۔ عزیزان گرامی، عباس ابن علی جو لشکر کے علمدار تھے، وہ لشکر طاقت والا لشکر نہیں تھا، اس لیے کہ لشکر میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر میں تھا۔ عباس کے لشکر میں کون تھے؟ ایک ششماہا تھا تو دوسرے 120 برس کا بوڑھا سپاہی بھی تھا۔ امام حسین کے لشکر میں 90 برس کے لوگ بھی ہیں، 6 مہینے کا گود والا بھی ہے۔ یہ لشکر لے کے عباس آئے ہیں تو طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کردار دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے امام حسین نے یہ نہیں کہا باپ یہ شمشیر لے کے جاؤ، کہاں مشک سکینہ لے کے جاؤ۔ عباس کو امام حسین طاقت کا نمائندہ بنا کے نہیں لائے تھے، کردار کا جوہر دکھانے کے لیے آئے تھے کہ مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھنا ہو تو آؤ علی کے بیٹے میں دیکھو، مشک سکینہ لے کے جا رہے، سارا لشکر دیکھ رہا ہے۔ ارے عزیزان گرامی، طاقت کا مظاہرہ تو بہت دیکھا دنیا نے، کردار کا مظاہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مشک سکینہ لے کر فرات پر قبضہ کر لیا۔ شرافت دیکھیے، کردار کی بلندی دیکھیے۔ اگر عباس پانی پی لیتے تو کون سی شریعت یہ کہتی کہ عباس نے گناہ کیا ہے نعوذ باللہ، یا شریعت کے خلاف عمل کیا ہے؟ اگر پیاسا دریا پر پہنچ کر پانی پی لے تو یہ غلطی نہیں ہے، خطا نہیں ہے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے نے فرات پہ گھوڑا ڈال دیا، لیکن پیاسے لوٹ کر آئے۔ ہم نے جب بھی تاریخ صداقت دیکھی، ایسی صداقت کی تاریخ نہیں دیکھی، ہم نے ایسا کوئی پیاسا نہیں دیکھا جو فرات پر پہنچ کر پیاسا لوٹ کر آیا ہو۔ عباس فرات پر پہنچے اور چلو میں پانی لیا، ایک طرف خیمے کا رخ کر کے کہا سکینہ پیاسی ہے، رقیہ پیاسی ہے، لشکر کو بتایا کہ ہم وہ نہیں ہے کہ جو بچوں کو پلائے بغیر بڑے پانی پی لیتے ہیں۔ یہ کردار ہے، یہ کردار حسینی ہے، اس کردار کا مظاہرہ کر کے لوٹے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کر کے لوٹے ہیں، اور اطاعت امام پر ایسے کمر بستہ رہے کہ امام نے کہا تھا باپ تلوار حملے کے لیے نہیں دفاع کے لیے چلائی جائے گی، تو اب جو تلوار چلی ہے دفاع مشکیزہ کے لیے، لیکن حملے کے لیے ایک بار بھی نہیں اٹھا، ہاتھ میں شمشیر تھی حملہ نہیں کیا۔ یہ اطاعت ہے، معصوم کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت پر ایسے مطیع و فرما بردار رہے، مشک سکینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن آئے وہ بازوؤں پہ حملہ ہوا، جو مشک سکینہ تحفظ کر رہے تھے. اب ظالموں کا ظلم دیکھیے, جو پانی لے کے جا, جو حملے کے لیے نہیں آیا ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے. جس کا رخ لشکر کی طرف نہیں خیمہ گاہ کی طرف تھا, اب جو لشکر نے وار کیا سامنے آ کے جرات نہیں تھی, پیچھے سے حملہ ہوا, دانا بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم ہوا, مشکے سکینہ ساتھ نظر آنے لگی. ایک زنزناتا ہوا تھی جس طرح سے علی اصغر کے گلوب نادر پہ لگا تھا, سکینہ کے مشک پہ لگا, مشک چھز گئی, پانی بہ گیا, اور پانی کے ساتھ عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب رخ خیمہ گاہ سے موڑ لیا, خیمے میں شوخا عباس آرام ہوا لیا. مسلمانوں کی جان نماز عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اسلام مسلمین کو سرفراز کرنا, دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو سبھی کو معاف کرنا. منشی اعلیٰ نے بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تاخیر فرمانا,